सोचिए जरा कि कोई एक बहुत बड़े और सफल जन आंदोलन का मुख्य चेहरा है, मतलब हजारों लोग उसकी बात सुन रहे हैं और एक पूरा शहर बदल रहा है।
एक नई ऊर्जा है हर तरफ।
हाँ बिल्कुल, और ठीक उसी वक्त सफलता के उस चरम पर एक अजीब सा आदेश मिलता है। आदेश ये कि ये सब कुछ यहीं छोड़ दो और तपती दोपहर में एक सुनसान रेगिस्तानी सड़क पर चले जाओ।
कोई भी रणनीतिकार तो यही कहेगा कि ये पागलपन है।
सही बात है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लगेगा।
एकदम।
लेकिन श्रोताओं, आज हम जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों का ये गहन विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो बताते हैं कि इसी पागलपन ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया।
और यही बात इस ऐतिहासिक खोज को इतना ज्यादा रोमांचक बनाती है। आज हम डॉक्टर क्रेग कीनर के एक्स 8 पर आधारित लेक्चर के नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं, और मेरा मतलब है कुछ बेहद दिलचस्प प्राचीन दस्तावेजों की परतों को भी खोलेंगे।
तो इस विस्तृत खर्चा कन्वेंशन दरअसल ये समझना है कि कैसे फिलिप नाम के एक व्यक्ति ने यरूशलेम की वो जो जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया थी उसे छोड़ दिया, और सदियों पुरानी दुश्मनी या कह लीजिए जादू टोने के गहरे प्रभाव को एक झटके में गिरा दिया।
हाँ, क्योंकि अक्सर सुनने वालों को लगता है कि प्राचीन इतिहास का मतलब बस तारीखें और राजा महाराजा है, लेकिन आज की ये चर्चा तो सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, और इसकी शुरुआत होती है यरूशलेम के केंद्र से बाहर निकलकर एक ऐसी जगह जाने से जहां सदियों से गहरी सांस्कृतिक दुश्मनी बनप रही थी। मेरा मतलब है सामारिया।
हाँ, डॉक्टर कीनर बताते हैं कि फिलिप सामारिया के एक शहर में जाता है जो शायद नेपोलिस था, और देखें, यहूदियों और सामारियों के बीच की दुश्मनी कोई छोटी मोटी नोकझोंक नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
वो एक पीढ़ियों पुराना वैचारिक और धार्मिक युद्ध था।
और उस दुश्मनी की गहराई को समझने के लिए डॉक्टर कीनर के नोट्स में एक बहुत ही मजेदार ऐतिहासिक कहानी है। तो एक बार एक यहूदी रब्बी और एक सामरी व्यक्ति के बीच तीखी बहस हो जाती है।
अच्छा, वो नूह की बाढ़ वाली कहानी?
हाँ हाँ वही। तो बहस इस बात पर थी कि नूह की बाढ़ के समय कौन सा पहाड़ नहीं डूबा था। सामरी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उनका पवित्र पहाड़ जो गेरिज़म था, वो उस भयानक बाढ़ में भी नहीं डूबा था।
और रब्बी वहां लाजवाब हो जाता है।
बिल्कुल, उसे कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन तभी उस रब्बी का जो गधा हांकने वाला एक आम आदमी था, वो शास्त्रों का एक ऐसा सटीक हवाला देता है कि वो सामरी व्यक्ति बहस में बुरी तरह हार जाता है।
और इस कहानी का जो अंत है ना, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है।
हाँ, वो रब्बी वाला हिस्सा।
सही का, रब्बी को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो खुद पैदल चलने लगता है और अपने उस गधा हांकने वाले को गधे पर बिठा देता है, क्योंकि वो शास्त्रों का ज्यादा बेहतर जानकार निकला।
वाह, मतलब ये छोटी सी घटना दिखाती है कि इन दोनों समुदायों के बीच अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कितनी होड़ लगी रहती थी।
बिल्कुल, एक दूसरे को नीचा दिखाना तो उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा था।
अब आप सोचिए, फिलिप एक ऐसी ही जगह पर जाता है जहां के लोग उसे और उसके समुदाय को देखना तक पसंद नहीं करते। लेकिन वहां सिर्फ वैचारिक टकराव ही नहीं था, समारिया में एक और बहुत बड़ा बाजार गर्म था।
आप प्राचीन जादू की बात कर रहे हैं ना?
हाँ, एकदम सही, और वो शायद कहीं ज्यादा खतरनाक था।
देखिए, प्राचीन काल का जादू वो नहीं था जो आज हम स्टेज पर देखते हैं, मतलब वो टोपी से खरगोश निकालने वाला जादू नहीं था। ये जीवन की समस्याओं को सुलझाने का एक पूरा उद्योग था,
मतलब एक तरह का शॉर्टकट।
हाँ, लोग प्यार पाने के लिए टोटके खरीदते थे, और तो और खेल की प्रतियोगिताओं में जब भारी सट्टा लगता था तो लोग विरोधियों के रथों को एक्सीडेंट करवाने के लिए बाकायदा श्राप लिखवाते थे।
बाप रे, सच में?
हाँ बिल्कुल, पुरातत्वविदों को खुदाई में सीसे की ऐसी कई पट्टियां मिली हैं जिन पर ये श्राप लिखे होते थे।
अगर इसे आज के संदर्भ में हम समझें तो प्राचीन जादू एक तरह से जीवन का शॉर्टकट या हैक था। लोग बस एक फॉर्मूला चाहते थे जिससे उनका काम बन जाए। लेकिन इन स्रोतों में एक अजीब बात ये सामने आती है कि इन सब में यहूदी जादूगरों की सबसे ज्यादा डिमांड थी।
इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमय कारण था। प्राचीन दुनिया में ये माना जाता था कि यहूदी लोग ईश्वर के गुप्त नाम के सही स्वर जानते हैं।
वो यावे वाला ना?
हाँ, YHWH। उस समय लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि अगर किसी देवता का असली नाम सही उच्चारण के साथ पुकारा जाए तो वो देवता आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता था।
तो मतलब यहूदी जादूगरों के पास जैसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चीट कोड था?
बिल्कुल, और वो उसे बेच सकते थे। सामारिया में एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसने इस चीट कोड वाले बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा दिया था। उसका नाम था साइमन।
साइमन द सॉसरर। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। जस्टिन मार्टर जो दूसरी सदी के एक बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने इसका जिक्र किया।
हाँ, जस्टिन मार्टर के अनुसार साइमन सबाश जैसे शहरों में खुद को देवताओं का अवतार बताता था। वो खुद को महान शक्ति कहता था और लोग सच में उससे खौफ खाते थे।
लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जब फिलिप वहां आता है और साइमन उसके जरिए होने वाले सच्चे चमत्कारों को देखता है, तो वो पूरी तरह हैरान रह जाता है।
और वो करता क्या है कि फिलिप के पास जाकर उस शक्ति को, जो कि पवित्र आत्मा थी, उसे पैसे से खरीदने की कोशिश करता है।
यहां पर एक सवाल उठता है, अगर साइमन खुद को देवताओं का अवतार बता रहा था तो वो फिलिप से इतना प्रभावित क्यों हुआ? मेरा मतलब है, क्या उसे अपना रुतबा खतरे में नहीं लगा? उसने सीधे पैसे का ऑफर क्यों दे दिया?
बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, प्राचीन दुनिया में हर देवता की एक कीमत होती थी। एक तरह का लेन देन या पेट्रोनेज का सिस्टम चलता था। साइमन कोई बहुत बुरा इंसान नहीं था, वो बस एक बिजनेसमैन था।
मैं चाहता था।
बिल्कुल सही। उसने सोचा कि ये कोई बहुत ही ऊंचे स्तर का जादू है जिसका फॉर्मूला उसे खरीद लेना चाहिए, लेकिन यहीं उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है।
हाँ, डॉक्टर कीनर ने यहाँ एक्सोडस या निर्गमन की किताब का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है।
हाँ, वो मिस्र के जादूगरों वाला संदर्भ, जहाँ मिस्र के जादूगर मूसा के कुछ चमत्कारों की नकल कर लेते थे और भ्रम पैदा कर सकते थे, लेकिन एक सीमा के बाद उन्हें भी हार मानकर कहना पड़ा कि ये तो ईश्वर की उंगली है।
मतलब जो साइमन ने सामरिया में देखा वो कोई शॉर्टकट या हैक नहीं था, वो अनुग्रह पर आधारित एक ऐसी शक्ति थी जिसे आप पैसे से कंट्रोल नहीं कर सकते।
बिल्कुल, उसके प्रति केवल समर्पित हुआ जा सकता है। असली शक्ति कभी बिकाऊ नहीं होती।
ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, और डॉक्टर कीनर के नोट्स बताते हैं कि ऐसी शक्ति के टकराव या पावर एनकाउंटर्स सिर्फ पुरानी किताबों की बातें नहीं है, ये आज भी दुनिया में हो रहे हैं।
जी हाँ, उन्होंने आधुनिक दुनिया के कई हैरान करने वाले उदाहरण दिए हैं। जैसे इंडोनेशिया का जिक्र है, जहाँ जादूगरों ने जब एक अलग और सच्ची शक्ति को काम करते देखा तो उन्होंने तुरंत अपने पुराने तरीके छोड़ दिए।
और वो दक्षिण अफ्रीका वाली घटना तो सबसे अद्भुत है जिसका जिक्र स्रोत में है।
ओह, वो खूंखार ओझा वाली घटना। हाँ, वो लोगों पर शाप फेंकने के लिए बहुत जाना जाता था। एक बार वो एक प्रार्थना सभा में सिर्फ इसलिए आया कि वो पूरी सभा को श्राप देगा।
और उसके बालों में बहुत सारे जादुई तावीज और हड्डियां गुंथी हुई थी, राइट?
हाँ, एकदम सही। लेकिन जैसे ही वो सभा में दाखिल हुआ, वहां की आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव इतना तेज था कि वो ओझा वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब उसे होश आया तो उसके सारे बाल उन ताबीजों और हड्डियों के साथ जड़ से झड़ चुके थे।
बाप रे, मतलब उसका सारा झूठा कंट्रोल और दिखावा एक ही पल में खत्म हो गया।
बिल्कुल, जब असली शक्ति सामने आती है ना, तो ये झूठे कंट्रोल टूट ही जाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि समेरिया में इस शक्ति के टकराव ने सिर्फ जादूगरों को नहीं बदला।
हाँ, यरूशलेम में बैठे बड़े नेतृत्व की सदियों पुरानी मानसिकता भी इससे पूरी तरह झकझोड़ दी थी।
और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये पूरे इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक बदलावों में से एक था। जब पीटर और जॉन को पता चलता है कि समेरिया में लोग इस नए आंदोलन से जुड़ रहे हैं, तो वो खुद वहां आते हैं।
और वहां आकर वो एक प्राचीन यहूदी परंपरा का पालन करते हैं, मतलब वो लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं ताकि उन्हें पवित्र आत्मा मिले।
और श्रोताओं को यहाँ इस घटना का ऐतिहासिक संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कीनर हमें याद दिलाते हैं कि ये वही जॉन है जिसने कुछ ही साल पहले लूका अध्याय 9 में यीशु से एक बहुत अजीब बात कही थी।
हाँ, उसने कहा था कि ये समरी हमारी बात नहीं सुन रहे, तो क्या मैं आसमान से आग मंगाकर इन्हें भस्म कर दूं? मतलब सोचिए जरा,
को आग से जला देना चाहता था। आज वही इंसान उन्हीं सामरियों के बीच खड़ा है
और प्यार से उन पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है कि उन्हें ईश्वर की सबसे पवित्र शक्ति मिले। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई कट्टर आतंकवादी अचानक शांति का सबसे बड़ा दूत बन जाए।
ये गैलीली लोगों के लिए और उस पूरे नेतृत्व के लिए एक भूकंप जैसा वैचारिक परिवर्तन था। यरूशलेम के नेतृत्व को आखिरकार ये स्वीकार करना ही पड़ा कि ईश्वर की शक्ति पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है।
वो समझ गए कि ये शक्ति उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिन्हें वो कल तक अछूत या बाहरी मानते थे।
बिल्कुल, उनका काम इस शक्ति को मुट्ठी में बंद करना नहीं था, बल्कि इसके रास्ते की दीवालों को तोड़ना था।
खैर, यरूशलेम के नेताओं ने सामरिया को तो अपना लिया, लेकिन फिलिप का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसे भीड़भाड़ वाले शहरों से निकालकर एक ऐसी जड़े भेजा जा रहा था जो रणनीतिक हिसाब से पूरी तरह एक करियर सुसाइड था।
और यहीं वो अजीबोगरीब आदेश का पैटर्न दोबारा सामने आता है। इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे बड़े बदलाव तर्क के बिल्कुल खिलाफ जाकर होते हैं।
जैसे लाल सागर के सामने मूसा को लाठी उठाने के लिए कहना।
हाँ, या फिर कोढ़े से पीड़ित सेनापति नामान को उस मैली सी जॉर्डन नदी में नहाने के लिए कहना। इंसानी तर्क के हिसाब से तो ये सब बेवकूफी ही थी।
तो फिलिप को आदेश मिलता है कि वे दोपहर के समय एक सुनसान रेगिस्तानी सड़क पर जाए जो गैजा की ओर जाती है। अब स्रोतों के अनुसार दोपहर का समय वो होता था जब चिलचिलाती धूप के कारण चरवाहे भी अपने जानवरों को छांव में ले जाते थे।
मतलब उस समय सड़क पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता होगा।
एकदम सुनसान, लेकिन फिर भी फिलिप वहां जाता है। और श्रोताओं, वो सड़क भले ही सुनसान थी, लेकिन वो असल में एक डिवाइन सेटअप था।
वो एक ऐसे व्यक्ति तक जाने का रास्ता था जिसे समाज और कानून दोनों ने हाशिए पर धकेल दिया था। वो व्यक्ति इथियोपिया की शक्तिशाली रानी कंदाके का खजांची था।
और इथियोपिया को उस समय मेरोए साम्राज्य कहा जाता था ना?
हाँ, जो अपनी अथाह संपत्ति और सोने लोहे के लिए पूरी प्राचीन दुनिया में मशहूर था। वो खजांची एक बहुत रसूखदार इंसान था जो अपने बेहद महंगे रथ में सफर कर रहा था।
लेकिन इन सबके बावजूद स्रोतों में एक बात साफ है कि वो एक यूनक यानी किन्नर था। और प्राचीन रोमन और यहूदी दुनिया में एक यूनक होने का मतलब क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है।
देखिए, प्राचीन दुनिया में ऐसे लोगों को बहुत नीची नजर से देखा जाता था। उन्हें ताने मारे जाते थे और आधा आदमी कहा जाता था।
उनका कोई परिवार भी नहीं हो सकता था।
और इससे भी बड़ी त्रासदी तो उनकी धार्मिक स्थिति थी। ड्यूटेरोनामी यानी व्यवस्था विवरण 23:1 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को यहूदी समुदाय में पूरी तरह से शामिल होने की सख्त मनाही थी।
वो यरूशलेम इबादत करने तो आया था, उसने इतनी लंबी यात्रा भी की थी,
लेकिन वो मंदिर के बाहरी हिस्से से आगे नहीं जा सकता था। वो हमेशा एक भारी इंसान ही रहता।
कितनी अजीब विडंबना है ये। राजनीतिक रूप से वो एक पूरे साम्राज्य का खजाना संभालता था, लेकिन धार्मिक रूप से वो अंदर जाने के लायक भी नहीं माना जाता था।
और डॉक्टर कीनर के नोट्स एक और बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। जब फिलिप उस सुनसान सड़क पर रथ के करीब पहुंचता है तो वो सुनता है कि वो अधिकारी जोर जोर से यूनानी भाषा में कुछ पढ़ रहा है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल यह है कि इतना बड़ा अधिकारी सड़क पर जोर जोर से क्यों पढ़ रहा था।
इसके पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक और ऐतिहासिक कारण है। प्राचीन काल में मन में पढ़ना बहुत दुर्लभ था। उस समय जो किताबें या स्क्रोल होते थे उनमें शब्दों के बीच खाली जगह नहीं छोड़ी जाती थी।
मतलब कोई स्पेस नहीं होता था।
हाँ, अक्षरों की बस एक लंबी लड़ी होती थी जिसे स्क्रिप्टियो कंटिन्यूआ कहा जाता था। इसलिए वाक्य का अर्थ समझने के लिए उन्हें आवाज का सहारा लेकर ही पढ़ना पड़ता था।
और श्रोताओं को यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय एक पूरे शास्त्र का स्क्रोल अपने पास रखना आज के जमाने में अपना खुद का प्राइवेट जेट रखने जैसा था।
बिल्कुल, ये साबित करता है कि वो अधिकारी सच्चाई की तलाश में कितना बेताब था। फिलिप का उस रथ के पास से गुजरना महज इत्तेफाक नहीं था।
तो वो अधिकारी यशाया 53 पढ़ रहा था, एक ऐसे सेवक के बारे में जो निर्दोष होते हुए भी कष्ट सहता है, जिसे समाज ठुकरा देता है।
आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके शारीरिक रूप के कारण समाज ने हमेशा नकारा हो, वो एक ऐसे शास्त्र को पढ़ रहा है जो नकारे जाने के दर्द को ही बयां करता है।
और फिलिप ठीक उसी वक्त वहां पहुंचकर उसे समझाता है कि ये शास्त्र किसके बारे में है। ये दृश्य अपने आप में बहुत ज्यादा भावुक है।
फिर वो रथ में आगे बढ़ते हैं और रास्ते में कहीं पानी दिखाई देता है। वो अधिकारी फिलिप से पूछता है कि देखिए, यहाँ पानी है, मुझे बपतिस्म लेने से अब कौन सी चीज रोक सकती है।
और ये सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस इंसान की आत्मा की पुकार थी जिसे जिंदगी भर हर जगह से सिर्फ रोका गया था, जिसे हमेशा दरवाजे से वापस लौटा दिया गया हो। वो पूछ रहा है कि क्या इस नए रास्ते में भी मेरे लिए कोई नो एंट्री का बोर्ड लगाए।
और फिलिप का जवाब शब्दों में नहीं था, उसका जवाब था कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।
प्राचीन काल में बपतिस्मा पूर्ण विसर्जन के द्वारा होता था। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि उस समय पूर्ण बपतिस्मे के लिए अक्सर निर्वस्त्र होना पड़ता था, ताकि पुरानी जिंदगी को पूरी तरह पीछे छोड़ने का प्रतीक साफ हो सके।
हालांकि यहाँ रास्ते में ऐसा हुआ होगा या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुख्य बात वो प्रतीक है, पूर्ण रूप से अपनाया जाना बिना किसी शर्त के।
और यहाँ स्रोतों से एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। इतिहास की किताबों में अक्सर रोमन सूबेदार कॉर्नेलियस को पहला गैर यहूदी कन्वर्ट माना जाता है,
लेकिन ऐसा नहीं है।
हाँ, आमतौर पर लोगों को यही लगता है। इतिहास की किताबों में कॉर्नेलियस का नाम इसलिए आता है क्योंकि वो पहला सार्वजनिक आस्तिक था जिसके बारे में यरूशलेम के पूरे नेतृत्व को पता चला था,
और वहां से आधिकारिक रूप से गैर यहूदियों के लिए दरवाजे खुले थे।
बिल्कुल, लेकिन असल में ये अफ्रीकी अधिकारी इतिहास का पहला
पूर्ण रूप से गैर यहूदी आस्तिक था। चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अफ्रीका के उस व्यक्ति ने सबसे पहले ये सीमा पार की।
उस समय इथियोपिया को दुनिया का दक्षिणी छोर माना जाता था, तो ये संदेश सचमुच दुनिया के छोर तक पहुंच रहा था।
और बपतिस्मे के तुरंत बाद एक और ऐसी घटना होती है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है।
हाँ, टेलीपोर्टेशन वाली घटना। फिलिप को अचानक ईश्वर की आत्मा द्वारा दूसरी जगह ले जाया जाता है। स्रोत इसे एजोटस या कैसेरिया बताते हैं।
सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन डॉक्टर कीनर कहते हैं कि इतिहास में और भी ऐसे दुर्लभ वाक्य दर्ज है जहां लोगों को रहस्यमयी तरीके से अचानक दूसरी जगह पहुंचा दिया गया।
ये इस बात का प्रतीक था कि फिलिप का काम उस सुनसान सड़क पर पूरा हो चुका था। वो अधिकारी खुशी खुशी अपने देश लौट जाता है और इथियोपिया में एक बहुत बड़े धार्मिक इतिहास की नींव रखता है।
लेकिन इन सब के बीच फिलिप का क्या होता है? उसने समारिया में इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया, पहले गैर यहूदियों को रास्ता दिखाया।
लेकिन आज इतिहास के पन्नों में हम पीटर और पॉल का नाम ज्यादा सुनते हैं, फिलिप का नाम तो कहीं पीछे ही छूट गया। अगर एक एनालॉजी से समझें तो फिलिप उस इंडी बैंड की तरह है जो अपने गैराज में संगीत की नई शैली बनाता है।
हाँ, वो जमीन तैयार करता है।
बिल्कुल, लेकिन सारी प्रसिद्धि, सारे अवार्ड्स और बड़े स्टेडियम शोज बाद में आने वाले मेनस्ट्रीम कलाकारों को मिल जाते हैं, जैसे पीटर या पॉल।
ये एनालॉजी बहुत सटीक है। डॉक्टर कीना फिलिप को एक गुमनाम नायक या अनसंग हीरो कहते हैं। उसने पीटर और पॉल के लिए रास्ता तैयार किया,
समारिया में भी और बाद में कैसेरिया में भी, जहां पीटर बाद में कॉर्नेलियस से मिलता है।
इतिहास अक्सर ऐसे ही काम करता है। कई बार दुनिया को बदलने वाले सबसे महत्वपूर्ण काम उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनके नाम इतिहास की किताबों में कभी नहीं छपते।
लेकिन जैसा कि डॉक्टर कीनर याद दिलाते हैं, ऐसे गुमनाम नायकों के नाम स्वर्ग में लिखे होते हैं।
और अंततः यही सबसे ज्यादा मायने रखता है कि काम पूरा हुआ न कि श्रेय किसे मिला।
तो श्रोताओं, इतिहास हमें यही सिखाता है कि दुनिया का नक्शा बड़े महलों या भरे हुए स्टेडियमों में नहीं बदलता, ये अक्सर उन सुनसान रास्तों पर बदलता है जहां समाज से निकाले गए लोग और गुमनाम नायक मिलते हैं,
जहां वैचारिक सीमाएं टूटती हैं, जहां जादू के शॉर्टकट के बजाय सच्ची शक्ति अपना असर दिखाती है और जहां तर्क से परे जाकर एक अजीबोगरीब आदेश का पालन किया जाता है।
और यही बात इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण को आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक बनाती है। मतलब दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़े मंच की जरूरत नहीं होती।
बिल्कुल नहीं होती।
तो जाते जाते एक विचार के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। क्या पता आज की इस अति जुड़ी हुई दुनिया में, जहां हर इंसान सोशल मीडिया पर अपनी अहमियत साबित करने में लगा हो, कोई ऐसी सुनसान सड़क हो जिसे हम इग्नोर कर रहे हों।
ऐसी कोई बातचीत या इंसान जो हमारे करियर के लिए फायदेमंद ना लगे, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला हो।
क्या पता किसी के जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव उसी सुनसान सड़क पर इंतजार कर रहा हो, जहां जाने का कोई रणनीतिक फायदा नजर नहीं आता। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए शुक्रिया। उन सुनसान रास्तों पर नजर रखिए।